हरे कृष्णा। आज के रविवार के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे किस तरह से हम हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो दूसरों को दोष देना हम टाल सकते हैं। भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं उनके क्या गुण होते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिरपैशनम दया भूतेश्वलो लुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम। यहाँ पे बताते हैं एक गुरुदेव अपैशनम। अपैशनम मतलब कि दूसरों में दोष नहीं देखना। मार्दवम, मार्दव मतलब मधुरता, मधुर बात करना, दूसरे से कटु वचन नहीं करना। तो ये सब दैवी गुण है। तो ये तीन प्रवचनों की श्रृंखला ले रहा था, हम ले रहे थे कल और परसों, चर्चा कर रहे थे किस तरह से जब हम दोष देखते हैं उससे हम खुद को ही कमजोर बना देते हैं। तो आप में से कितने लोग कल या परसों के प्रवचन के लिए थे, कल शाम के या परसों शाम के? ओके, थैंक यू। तो फिर श्री भागवतम में वर्णन आता है कि जब हम किसी में दोष देखते हैं तो उससे हम एक चीज करते हैं, दो व्यक्ति जिसने हमें समस्या की है वो जिस अज्ञान में है हम खुद को भी उसी अज्ञान में रखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ समस्या करता है, कोई हम नौकरी कर रहे हैं तो वहां पे कोई हमारे पीछे कुछ बुरी बात कर रहा है, हमारे परिवार में कोई है व्यक्ति जो हमें परेशान करता है, हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब लोग हमें परेशान करते हैं। और एक तरह से ये देखना स्वाभाविक है कि ये लोग, ये व्यक्ति मेरे परेशान का कारण है। पर ऐसा देखने से हमें, हम कहां तक हल तक पहुंच रहे हैं, क्या जो परिस्थिति है किसी की, अगर ये अगर मान लीजिए कोई शारीरिक बीमारी है, ये बीमारी इसके कारण हुई, ये जानना एक तरह से जरूरी है। पर उससे महत्वपूर्ण ये है कि बीमारी को ठीक कैसे कर सकते हैं। अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो क्यों हुआ है वो जानना जरूरी है, पर ये महत्वपूर्ण ये है कि उससे ज्यादा कि आप ठीक कैसे करना है, क्योंकि आप मलेरिया कहाँ हो गया, कैसे हो गया, किस परिस्थिति में हो, जान सकते तो अच्छा है, पर उससे महत्वपूर्ण क्या है उसको ठीक कैसे करना है। तो जब हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है तो साधारणतया हम दो स्तर पे इसको देख सकते हैं। एक है कि इसको हम सब कुछ नियति मान सकते हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरी किस्मत ही फूटी है, इसको दैववाद कहते हैं। दैववाद मतलब सब कुछ दैव से निर्धारित है और मैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं अभी कुछ समय पहले साउथ अमेरिका में था तो वहां पे एक बड़ा, लगभग 400-500 साल पहले एक बड़ा राज्य था, एक बड़ी ट्राइब थी एस्टेक नाम की। तो उनके ट्राइब में ऐसे एक दैव, ऐसे एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब इस अमावस्या की रात को एक घोड़ा अकेला आपके शहर में आ जाएगा, आपके गांव में आ जाएगा, आपके इलाके में आ जाएगा, अकेला सफेद घोड़ा, तो वो लक्षण है इसका कि आपके राज्य का अंत होने वाला है। तो तभी क्या हुआ, वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी जो थे वो वहां पे गए थे और वो वहां पे अपना राज्य करना चाहते थे, वो कन्वर्ट करना चाहते थे। तो जब तभी उनको पता चला कि ये उनके, उन लोगों में ये विचार है, तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के उस रात को उन्होंने एक सफेद घोड़ा वहां पे भेज दिया। और अभी ये जो एस्टेक रेस था ये हजारों हजारों की संख्या में थे, और फिर उसके बाद में एक सिर्फ लगभग 400-500 लोगों की एक सेना आ गई उन पे आक्रमण करने के लिए, और ये हजारों की संख्या में थे।
पर वो पिछले रात को वो घोड़ा आ गया, अगले दिन ये सेना आ गई, और जैसे ये सेना आ गई वो सारे हजारों लोगों ने अपने अपने शस्त्र छोड़ दिए और हार मान ली। तो क्या है कि ये जो दैव की बात कही जाती है, कभी कभी इसके कारण व्यक्ति जो अपने हाथ में है वो भी नहीं करेगा। अगर हम बोलते सब कुछ दैव पे दैव द्वारा निर्धारित है, हमारे जीवन हाथ में कुछ भी नहीं है, तो ये गलत है। जरूर हमारे हाथ में कुछ तो है। तो मैं अमेरिका में था, एक सवाल पूछा था कि सब कुछ दैव द्वारा निर्धारित है। तो फिर मैंने उनको पूछा, क्या आपने सवाल पूछा है दैव द्वारा निर्धारित है? हाँ, ये भी निर्धारित है। ठीक है, तो फिर दैव द्वारा निर्धारित है कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं सवाल पूछा, आपको जवाब देना चाहिए। तो वास्तव में जब हम कहते हैं सब कुछ दैव द्वारा निर्धारित है, तो यह एक तर्क के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर है, दोनों से वास्तव में उचित नहीं है। तर्क के आधार पर क्या होता है? अगर हम कहते हैं कि सब कुछ दैव द्वारा निर्धारित है, तो फिर हमारी खुद की जिम्मेदारी जो होती है, हमारी खुद की स्वेच्छा जो होती है, उसका कुछ मार्ग ही नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा जीवन जी रहा है, वो शराबी बन जाता है, तो क्या उसका शराब पीना दैव है, या उसका ही उसके ही उसकी स्वेच्छा का दुरुपयोग है? अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के जानते हैं कुछ गलत कार्य करता है, तो वो दैव नहीं है, वो उसकी खुद की गलती है। ऐसे और वैसे शास्त्र बताते हैं कई जगह पे, आप ऐसे करो ऐसे मत करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ, यह कार्य करना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्या कार्ये भया भये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बुद्धि से हमें समझना चाहिए भगवान कहते हैं। तो अगर शास्त्र बताते हैं आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, अगर पहले से ही दैव द्वारा सब कुछ निर्धारित है क्या करने वाले हैं हम, तो फिर ऐसे बताने की जरूरत भी क्या है शास्त्र? बलदेव विद्याभूषण हमारे एक महान आचार्य है, उन्होंने वेदांत सूत्र में भाष्य लिखा है, गोविंद भाष्य, उसमें यही तर्क लेते हैं वो कि शास्त्र ही अर्थहीन हो जाएंगे अगर सब कुछ दैव द्वारा निर्धारित है, क्योंकि फिर कुछ हमारी स्वेच्छा है ही नहीं, शास्त्र को बताने का फायदा ही क्या है, ये करो ये मत करो। तो ये एक विचारधारा है कि सब कुछ दैव द्वारा निर्धारित है। दूसरी विचारधारा यह है कि सब कुछ हमारे कर्म द्वारा ही निर्धारित है, उसको कहते हैं कर्मवाद, कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं जरूर यशस्वी हो जाऊंगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं ये बन सकता हूं वो बन सकता हूं, जो भी मेरे मन में इच्छा आएगी मैं पूरी कर सकता हूं। अभी आजकल के आधुनिक समाज में अधिकांश लोगों का जोर इस कर्मवाद की ओर होता है कि आपका मन दृढ़ बना लीजिए, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल बना लीजिए, जो भी आपका मन लगाएंगे आप वो कर सकते हैं। अभी यह एक तरह से हमें आकर्षक लग सकता है, पर सत्य यह है कि हमारे जीवन में जो भी होता है उसमें सिर्फ हमारा ही कार्य फल को निर्धारित नहीं करता है। मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच चल रही है, कोई क्रिकेट टीम बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग करते हैं, बहुत अच्छी तरह से खेलती भी है, और जीतने पे आने वाले हैं, तभी बारिश आ जाती है और मैच बंद हो जाती है। अभी वो कितना भी प्रयास करे वो बारिश को तो रोक नहीं सकते। हम कितना भी प्रयास करें हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी है जिनका जो हमारे नियंत्रण में नहीं है और उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम जीवन में जब जीते हैं तो हम ये दो चीजों को देखते हैं, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो जो चीजें हमारे नियंत्रण में है उसको जब लोग बहुत जोर देते हैं तो वो उससे आता है कर्मवाद का विचार, और जो लोग जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है उसको बहुत ज्यादा जोर दे देते हैं तो उससे आता है दैववाद का विचार। तो जो सत्य क्या है, यह दोनों के बीच में है। हमारा कर्म भी महत्वपूर्ण है और दैव भी महत्वपूर्ण है। तो इसका उदाहरण ले सकते हैं, हम एक दो उदाहरण ले सकते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका फल कैसे बनता है, अगर हम उसको एक इक्वेशन के रूप में बोलना चाहेंगे तो कर्म प्लस दैव प्लस काल इज इक्वल टू फल। हमारा कर्म होता है, दैव होता है, काल होता है, इन तीनों के साथ जो समन्वय जब होता है तो फल आता है। अगर कोई किसान है वह बीज लगाता है, तभी क्या होता है उसका कर्म है कि खेती करना, बीज डालना जमीन में, उसके बाद में बारिश सही मात्रा में और सही समय पर आना, वो दैव है। उसके बाद में काल, उसके बाद जब काल जाएगा तभी जब वो खेती अनाज उगने का समय आ जाएगा तभी उसको अनाज मिलेगा। ये तीनों चीजें जरूरी है, कर्म दैव और काल, जब तीनों साथ में होते तब फल आता है। अगर कोई पति पत्नी है वो बच्चा चाहते हैं तो वो बच्चा चाहते हैं तो फिर वो कर्म कर सकते हैं उसके लिए, पर कई बार प्रयास करने के बाद भी बच्चा नहीं होता है। सिर्फ उनके प्रयास करना ही सब कुछ नहीं है, वो प्रयास करते हैं पर उससे उसके परे भी कुछ और चीज है, कर्म है और दैव है। और भले ही मैं प्रयास किया बच्चा हो रहा है फिर भी उसको नॉर्मल लगता है, वो काल के बाद ही बच्चे को उत्पन्न होते हैं। तो कर्म दैव और काल ये तीनों हमारे जीवन में कोई भी फल लाने में इन तीनों का सहयोग होता है। तीनों जब साथ में होते हैं तो जो हमारा इच्छा है वो फल आता है। तो अभी जब हमारा ये दैव जो है ये एक बड़ा विस्तारित विषय है, दैव पे हम जोर नहीं दे रहे हैं, हम संबंधों पे जोर दे रहे हैं कि संबंधों में जब गलतफहमियां होती है, जब घृणा होती है, जब कोई हमारे परेशान करता है तो हम उनको दोष दे या ना दे उसको हम कैसे देखने हैं, ये देख रहे हैं। तो अभी मान लीजिए हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है वो हमें बहुत परेशान कर रहा है, तो अभी एक तरह से हम देखेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है इसलिए मुझे परेशानी हो रही है। हमारे ऑफिस दफ्तर में कोई एक बॉस, पहला बॉस जो था अच्छा था, दूसरा बॉस आ गया बार बार हमें तंग करते रहता है, तो पहले तो सब कुछ अच्छा था, अब ये बॉस के कारण बहुत परेशानी आ रही है। तो अभी इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसके कारण ही समस्या आ रही है, तो हम ये देख के दोष दे सकते हैं उसको, पर वास्तव में ये अपूर्ण दृष्टि है। अपूर्ण दृष्टि है मतलब क्या, कि वह एक ही कारण नहीं है। अभी ऐसे हो सकता है कि हमने कुछ ऐसे किया है और वो व्यक्ति बॉस ने हमारे बारे में कुछ सुना है जिसके कारण उनको लगता है कि हम एक अलग प्रकार के व्यक्ति है, उसके कारण हमको परेशान कर रहे हैं। क्या क्या हो सकता है पता नहीं है, पर हम क्या देख सकते हैं कि हमारे हाथ में क्या है। अभी अगर हम पांडवों का जीवन देखते हैं तो पांडवों के जीवन में वो राजकुमार थे, पर बचपन से वे उनका जन्म जंगल में हुआ, जंगल में ही रह रहे थे ऋषि मुनियों के साथ, और एकाएक वो उनके पिता गुजर गए। पिता गुजर गए मतलब जैसे मान लीजिए अनाथ के समान हो गए, उनकी माता थी पर अकेली थी, तो फिर वो वापस राज्य में आ गए। जब राज्य में आ गए उस समय तक कुरु राज्य में दुर्योधन ही राजकुमार के समान जी रहा था, सबको लग रहा था कि वही अभी अगला राजा बनने वाला है, उसको खुद को लग रहा था कि यही मेरा अधिकार है। और फिर जब पांडव आ गए तो पांडव इतने सुशील थे, इतने सुसंस्कृत थे, शीलवान थे कि लोग उनके ओर आकर्षित होने लग गए, और इससे दुर्योधन के मन में बड़ी ईर्ष्या होने लगी। अभी दुर्योधन उनके खिलाफ अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र करने लगा, षड्यंत्र करने लगा, और धृतराष्ट्र भी उसको सहयोग, उसको ना नहीं बोलते थे उसकी बात में। जो ऐसे कहते हैं कि दुर्योधन वाज द एक्टिव विलन एंड धृतराष्ट्र वाज द पैसिव विलन। जो खलनायक होता है, एक खलनायक होता है जो सारा बुरा काम करता है, और दूसरा खलनायक जो होता है वो खुद बुरा काम नहीं करता है पर बुरा काम करने से रोकता भी नहीं, ठीक है तो कर रहा है, कर रहा है, और देख के अनदेखा कर रहा था। तो अभी जो पांडव थे एक तरह से देखेंगे उनका कुछ दोष है ही नहीं, वो तो छोटे बालक थे, वो जहां जन्म हुआ वहां पे रह रहे थे, क्योंकि उनके पिता गुजर गए इसलिए वो राज्य में आ गए, उनका ही राज्य था, उसी वंश के पुत्र है, पर उनके खिलाफ ऐसे साजिश हो, ऐसे षड्यंत्र, ऐसे साजिश होने लग गई कि उनके जान लेने का प्रयास कर रहे थे। तो अभी इस समय क्या करना चाहिए, अभी जब हमारे जीवन में ऐसी समस्या आती है, कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है, कोई परिस्थिति हमें बहुत परेशान कर रही है, तो हम हमें क्या करना चाहिए? तो वास्तव में इसके लिए हमें हम ऐसे परिस्थिति में तीन पर्याय हमारे पास, तीन पर्याय, इसको अंग्रेजी में मैं कहता हूं टॉलरेट, मिटिगेट, इमिग्रेट। टॉलरेट मतलब सहन करो, मिटिगेट मतलब प्रतिकार करो, और इमिग्रेट मतलब कहीं और चले जाओ। तो अगर मान लीजिए हम किसी एक नई जगह में जाकर रहने लगते हैं और वहां पे हमको नौकरी मिल गई, वहां पे हमारा घर है, पर वहां का वातावरण बहुत ही गर्म है और हमको सहन ही नहीं होता है, बहुत परेशानी होती है उससे। अभी ऐसा वातावरण आ गया तो हम क्या कर सकते हैं? बस ये तीन पर्याय, सहन कर लो, यहीं पे आपको रहना है तो धीरे धीरे आप अभी आदत नहीं है क्योंकि इतने गर्मी की आदत नहीं, पर आदत पड़ जाएगी, सहन कर लो उसको। अगर सहन नहीं होता है तो फिर मिटिगेट, मिटिगेट मतलब कुछ प्रतिकार करो उसका। टॉलरेट नहीं कर सकते तो मिटिगेट मतलब क्या करना है? फिर आप घर में अच्छे फैन लगा लो, एयर कंडीशन लगा लो, या हवा के लिए कुछ योजना बना लो, जो भी उसका प्रतिकार करना है प्रतिकार करो। पर उससे भी बहुत परेशानी हो रही है, सहन नहीं हो रहा है, अलग अलग प्रकार की व्याधियां आ रही है, तो फिर मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मैं कहीं और जाऊंगा, इमिग्रेट, मैं कहीं और चलूंगा। तो क्या है ये तीन पर्याय, जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है ये तीन पर्याय हमारे पास है, और हर एक पर्याय के कुछ फायदे हैं के कुछ नुकसान हैं, और हमें इन तीनों में से एक चुनना है। कई बार क्या होता है, अभी हर एक पर्याय का कुछ फायदा है कुछ नुकसान है, हम क्या चाहते हैं कि जब बाकी सारे तीनों पर्याय हैं, तीनों पर्यायों के हमें फायदे मिल जाए और कोई भी नुकसान ना हो, वैसे नहीं होता है। तो अभी क्या है, ये तीनों पर्याय जो है, ये परिस्थिति में देखेंगे हम पांडव ये तीनों मार्ग अलग अलग समय पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले जब वो युवक ही होते हैं तभी दुर्योधन षड्यंत्र बनाता है कि वो भीम को जहर पिला देता है, खिला देता है, और जब भीम को जहर खिला देता है तो भीम, और न केवल जहर खिला देता है, उसके बाद में उसको जब सो गया होता है भीम, बेहोश गया होता है, उसको बांध के पानी में फेंक देता है। पर भगवान की योजना से वो ऐसी योजना होती है कि वो जिस नदी में उसको फेंकता है वहां पे कुछ सांप होते हैं, और सांप जब भीम को काटते हैं तो सांप का जो जहर होता है उस जहर से दुर्योधन ने जो जहर दिया होता है उसका प्रतिकार हो जाता है, और फिर भीम होश में आता है, उसको चारों ओर सांप देखते हैं। भीम बचपन से ही क्षत्रिय भाव में होता है। साधारण कोई व्यक्ति, कोई 15-20 साल का कोई व्यक्ति होगा, 15 साल का लड़का होगा, सांप देखा 10-15 सांप चारों ओर डर जाएगा, पर भीम देखता है सांप और उसको देखता है सांप ने काटा मुझे, वो सांप पे ही गुस्सा आ जाता है और सांप को उठा के फेंकने लगता है वो, फिर एक सांप को उठा के दूसरे सांपों को पीटने लगता है वो, और उस सांप को भी फेंक देता है। वो सांपों ने ऐसा कभी बर्ताव के हुआ ही नहीं था, कैसा व्यक्ति है बोलते। तो फिर वो जाके वरुण देव को बोलते कि ये आपके इलाके में पानी, वरुण देव पानी के देवता है, तो आपके इलाके में ऐसा ये अजीब मानव आ गया है। तो वो जो लक्षण थे वो समझ गए कि ये भीम आ गया है। तो फिर वो भीम को अपने राजमहल में बुलाते हैं और फिर उसको एक दिव्य अमृत जैसी चीज देते हैं और उससे भीम की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। पर पहले क्या होता है, वो भीम वो अमृत होता है, वो अमृत पीना भी आसान नहीं होता है क्योंकि बहुत हैवी होता है वो। तो जो देवतागण भी जो होते हैं, वरुण और वरुण भी उसके पार्षद होते हैं, वह लगभग वो एक कंटेनर, एक नॉट बर्तन, एक बर्तन भर के पी सकता है, पर भीम अकेले कई बर्तन पी लेते हैं और फिर वो सब पी के फिर कई दिनों तक भीम सो जाता है, और उस समय तक दुर्योधन को लगता है कि मेरा षड्यंत्र यशस्वी हो गया, भीम की मृत्यु हो गई। पांडव बड़ी चिंता में रहते, भीम कहाँ है, भीम कहाँ है। और फिर जब भीम जाग जाता है तो पूरे शक्ति के साथ फिर नदी से वापस आ जाता है, और तभी तो भीम काफी क्रोध में होता है, ये समझ जाता है कि दुर्योधन ने मुझे जहर देने का प्रयास किया। पर जब युधिष्ठिर सारी कहानी सुनते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ये घर की बात है, इसको और बढ़ाओ मत। वो सोचते हैं कि ये हम अभी अभी कुछ साल पहले इस परिवार में आए हैं, और क्या है भीष्म पितामह है, उनको दो पक्षों में फिर चुनाव करना पड़ेगा, इसके पक्ष में हूँ कि इसके पक्ष में हूँ, और फिर सारे हमारे परिवार में एक भेद हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम कुछ करें नहीं अभी, हम बाद में तो हम सिर्फ चौकन्ने रह जाएंगे और इसको सहन कर लेंगे। तो यहाँ पे वो पर्याय करते सहन कर लो। फिर उसके बाद वारणावर्त में उनको जिंदा जलाने की योजना बनाई जाती है, तभी पांडव बच जाते हैं। पर तभी पांडव क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, उसको सहन कर लेते हैं। पर उसके बाद में उनका उनका वो द्रौपदी का हाथ प्राप्त करते हैं, और क्योंकि द्रुपद राजा बड़े शक्तिशाली होते हैं, तो अभी क्योंकि वो उसके उनके जमाई बन गए हैं, तो इसे धृतराष्ट्र फिर उनको वापस बुला लेते हैं और आधा राज्य उनको दे देते हैं। तो अभी तक क्या है, पांडव कौरव जो भी करते हैं उसको सहन कर लेते हैं। पर उसके बाद में जब जुए का खेल होता है, और उसमें न केवल कौरव और पांडव से कुछ छीन लेते हैं, पर द्रौपदी का भी बड़ा अनादर कर लेते हैं, तब एक सीमा का पार हो जाते हैं। और तभी पांडव व्रत लेते हैं कि वो कौरव को सजा देंगे। उसके बावजूद जो वनवास में जाते हैं, वनवास में आने के बाद फिर भी पांडव शांति का प्रस्ताव रखते हैं, पर शांति का प्रस्ताव वो जो है कौरव ठुकरा देते हैं। अभी ना बोलने की भी अलग अलग पद्धति है। अगर मान लीजिए हम किसी को कार्यक्रम में हम बोलते हैं कि हम एक कार्यक्रम है हमारे यहाँ पे, आप आ जाओ, तो नहीं मैं मुझे ये यहाँ जाना है इसलिए मैं नहीं आ सकता, तो ये एक तरह से ना बोल रहे हैं। कोई बोलता है कि मैं मर भी जाऊंगा तो मेरी लाश भी तुम्हारे कार्यक्रम में नहीं आएगी। अगर कोई ऐसे बोलेगा तो उसका मतलब क्या है, वो केवल उस कार्यक्रम को ना नहीं बोल रहा है, उस व्यक्ति को ही ना बोल रहा है। वो केवल नहीं नहीं बोल रहा है, व्यक्ति के मुंह में दरवाजा जोर से बंद कर रहा है। तो उसी तरह से जो दुर्योधन को कृष्ण शांति का प्रस्ताव रखते हैं, दुर्योधन क्या कहते, कृष्ण कहते कि आप पांडव को 5 गांव दे दो, और वो क्या जवाब देता है कि मैं उतनी जमीन भी नहीं दूंगा जितने कि आप सुई को जमीन में डाल सकते। तो मतलब ये क्या है, ये केवल उस प्रस्ताव को ना नहीं है, उस व्यक्ति को ही ना है। तो इस तरह से ना बोल देते हैं तो मतलब वो व्यक्ति कुछ भी सही करने के लिए तैयार ही नहीं, कुछ समझौते के लिए तैयार ही नहीं है। तो अभी ऐसे व्यक्ति को सहन करने में कुछ मतलब नहीं है, उस व्यक्ति का प्रतिकार ही करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि उसके प्रतिकार मतलब क्या, पांडव तभी युद्ध करते हैं, उनको कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाता है, और फिर दुर्योधन को उसके जो सारे अत्याचार के उसकी सजा मिलती है, वो सारे कौरवों का वध हो जाता है। तो अभी मतलब महाभारत में दोनों पद्धति, दोनों विचार दिखाए हुए, दोनों पर्याय दिखाए हुए कि कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है तो उसको सहन करो, पर वो जो सहन करना ही सर्वोच्च सद्गुण नहीं है। कुछ ऐसा समय आता है जब सहन करना वो एक कमजोरी बन जाती है। साधारण सा परिस्थिति में सहन करना ही एक शक्ति होती है, पर कभी कभी सहन करना एक कमजोरी बन जाती है। तो अभी ये किस पे निर्भर है कि जब मैं सहन कर रहा हूं तो वो मेरे कमजोरी का लक्षण है या वो मेरे शक्ति का लक्षण है, ये इसी चीज पे निर्भर है कि हमारा उद्देश्य क्या है। टॉलरेंस मीन्स टू कीप स्मॉल थिंग्स स्मॉल सो दैट वी कैन फोकस ऑन द बिग थिंग्स। सहनशीलता का मतलब है कि छोटी चीजों को छोटा रखे ताकि हम जो बड़ी चीज है उस पर जोर दे सके। तो अगर हमारे जीवन में कोई परेशान कर रहा है तो ठीक है, वो परेशान तो कर रहा है, पर अगर हम हमारा सारा मन उसमें लगे ऐसे क्यों करता है, इतना खराब कर्म प्रकृति का व्यक्ति है, ऐसे करता है, वैसे करता है, ये करता है, उसी में हम हमारी सारी जिंदगी गवा देंगे, सारा समय गवा देंगे, तो फिर हम कुछ सकारात्मक कार्य नहीं कर पाते। ठीक है ये व्यक्ति ऐसा है, पर मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरा योगदान क्या है, उस पर अगर जोर देते हैं ठीक है, उसमें ये थोड़ा परेशानी कर रहा है ये व्यक्ति, पर दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ तो परेशानी रहती ही है, ठीक है मैं इसको सहन कर लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो ये क्या है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वह जहां जब तक हमें पता होता है तो फिर उसके आधार पर ये व्यक्ति ने मुझे परेशान किया है मुझे, पर अब ऐसे नहीं कह रहे कि ये व्यक्ति परेशान नहीं कर रहा है, ये परेशानी नहीं है मुझमें, परेशानी है, पर वो कितनी परेशानी है, क्या मैं सहन कर सकता हूं, सहन नहीं कर सकता। अभी ऐसे कहते हैं कि कोई खेलकूद में, जैसे क्रिकेट में, टेनिस में, फुटबॉल में, जब स्पोर्ट्स प्लेयर खेलते हैं तो ऐसे होता है कि कभी भी किसी का शरीर 100% फिट नहीं होता है। अगर कोई एथलीट बोलेगा कि जब मेरे शरीर के किसी भी अंग में कोई दर्द नहीं होगा तभी मैं खेलूंगा, तो कभी भी खेल नहीं पाएगा, क्योंकि दर्द नहीं भी होता है तो एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तभी थोड़ा दर्द होता है। तो ऐसे कभी होगा ही नहीं हमारे शारीरिक स्तर पे किसी एथलीट के कि पूरा 100% फिट है। फिटनेस जरूरी है पर थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ा सा समस्या है, वो सहन करके आगे बढ़ते हैं। जो शारीरिक स्तर पे होता है कि शारीरिक स्तर पे अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि मुझे 100% फिटनेस चाहिए, वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कमाई समय में समय तक आता है, बहुत आसान से चला जाता है। वैसे ही जैसे शारीरिक स्तर पे दर्द अलग 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 प्रवृत्ति का होता है। थोड़ा सा हम थोड़ा ज्यादा वजन उठा ले थोड़ा दर्द होता है कभी कभी, पर कभी कभी बिना कोई वजन उठाए भी थोड़ा दर्द रहता है, कभी कभी इतना दर्द रहता है कि कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर जरूर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हमको कुछ दवाई लेनी पड़ती है, कुछ फिर रेस्ट लेना पड़ता है। तो जैसे शारीरिक दर्द होता है उसका भी एक स्केल होता है, और वो स्केल जो होता है उसका जो एक दर्जा होता है उसमें हम देखते हैं कि मुझे जो काम करना है उसमें ये दर्द कितना मुझे समस्या कर रहा है। छोटा सा भी दर्द होगा पर अगर वो बार बार आए परेशान कर रहे, शायद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ दवाई ले लेंगे और फिर अपना काम करेंगे। पर अगर वो दर्द पता ही नहीं चल रहा है क्यों आ रहा है, जा नहीं रहा है, तो व्यक्ति दर्द को सहन करके आगे चलता है। तो जो हम शारीरिक दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं विचारधारा, वही हम मानसिक दर्द के लिए कर सकते हैं। कोई संबंध में होता है, अरे ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है अभी परेशानी तो है पर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, और उस महत्वपूर्ण कार्य करने की तुलना में ये मुझे कितना परेशान कर रहा है। दो दिन पहले के प्रवचन में उदाहरण दिया था मैंने कि मान लीजिए अगर हम किसी लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, जब लोकल ट्रेन में जा रहे हैं तो 50 लोगों का ट्रेन है वो, पर उसमें 250 लोग हैं, सब लोग एक दूसरे को कुचल के बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति दादागिरी कर रहा है थोड़ा, तो वो हम उसके बाजू में खड़े वहां को ढकेलने लगता है, तो अगर मुझे हमको गुस्सा आ जाता है तुम मुझे ढकेल दो, मैं तुम सोचते हो बड़े शक्तिशाली हो मैं भी शक्तिशाली हूँ, हम उसको ढकेलने लगते हैं, वो हमको ढकेलने लगता है, हम उसको ढकेलने लगते हैं, और वो ढकेलने में हम इतना फंस जाते हैं कि हमारा स्टेशन आ जाता है, जाता है हम ढकेलते रहते हैं। तब ये क्या है, व्यर्थ है। तो ठीक है अगर ढकेल रहा है, ठीक है तुमको इतना अपनी शक्ति दिखाना है, हम थोड़ा बाजू पे खड़े हो जाएंगे, सो जो करना है कर लेंगे, हम थोड़े समय के लिए आधे घंटे के लिए वहां पे है ट्रेन में, हमारा स्टेशन आएगा उतर के चले जाएंगे। तो वहां पे वो व्यक्ति ढकेलता है छोटी सी बात है, पर वही व्यक्ति अगर हमको न केवल ढकेलता है अपनी जगह से पर ट्रेन से ही बाहर ढकेलने लगता है, तो फिर उसको सहन नहीं कर सकते, उसका प्रतिकार करना चाहिए। तो एक दर्जा है, एक मात्रा है कि उसमें हमारा जो महत्वपूर्ण कार्य क्या है उसमें इस चीज से कितना व्यत्यय आ रहा है। हमारा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, हमको हमारे जिस स्टेशन पर जाना है उधर तक तो जाना है, तो व्यक्ति ढकेल रहा है उस थोड़ा व्यत्यय आ रहा है, मैं कहीं और खड़ा हो सकता, पर कार से बाहर ढकेल रहा है ये मतलब मैं वहां तक जा ही नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मुझे अभी क्या करना है, मुझे इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। ठीक उस तरह से जब हमारे जीवन में कुछ संबंध में समस्या आती है तो मन जो होता है वो कई बार छोटी समस्या को बहुत बड़ा बना देता है। आपको पता है कि टीवी पे या यूट्यूब पे ऐसे रिप्ले होता है, अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और कोई बहुत अच्छा शॉट मार लेता है तो फिर लोग रिप्ले देते हैं, कैसे शॉट मार देखा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे लोग रिप्ले देखते हैं। तो क्या होता है, वैसे जैसे रिप्ले टीवी पे हो सकता है वैसे हमारे मन में भी रिप्ले होते रहते हैं। क्या होता है, रिप्ले पुनः होता है, कोई व्यक्ति ने हम कुछ ऐसा ऐसा कुछ अपमान किया, ऐसे कुछ किया जिससे हमको बहुत दर्द हुआ है, तो क्या होता है वो एक बार वो घटना घट जाती है पर हमारे मन में वो रिप्ले होते रहता है, इसने ऐसे क्यों किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और हमारा मन ऐसे होता है कि ये हर बार रिप्ले करता है तो रिप्ले करते समय और स्पेशल इफेक्ट दे देता है उसमें, इसने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और जितनी हम घृणा करते हैं, जितना हम गुस्सा करते हैं, वो क्या होता है, वो रिप्ले और स्पेशल इफेक्ट से भर जाता है, और ये व्यक्ति पहले ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे प्रकार का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति ने अपमान किया है पर ये मन रिप्ले करते रहता है, वो व्यक्ति ने केवल मेरा अपमान नहीं किया, वो व्यक्ति एक असुर बन जाता है, मेरे पर राक्षस बन जाता है, हैवान बन जाता है, और वो उसको हम पूरा और रिप्ले से क्या होता है, बार 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 वही विचार करते रहते, तो उससे हम खुद को दुख पहुंचाते हैं। व्यक्ति ने वो जो किया है वो किया है, चला गया वो व्यक्ति, पर हम खुद को दुख पहुंचा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हमें वो रिप्ले को बंद करना है। जो समस्या है जरूर समस्या है, उसने जो किया है वो है, पर वो छोटी समस्या को हमारा मन बहुत बड़ा बनाता है कि मन उसी चीज को रिप्ले करता है, ऐसे हुआ वैसे हुआ वैसे हुआ। तो उस समय अगर हमें क्या करना है ये समझना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे मन के जो रिप्ले है उससे दूर जाना है, कि मन हमको विचार करने का मौका ही नहीं देगा। अरे ये इतना बुरा व्यक्ति है, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, बार 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 वो बोलते रहेगा, हम कुछ विचार ही नहीं कर पाएंगे। कभी हमें प्रतिकार करना है, कभी हमें सहन करना है, कभी वो परिस्थिति को छोड़ कर चले जाना है। जैसे पांडव बाद में जब भगवान कृष्ण अपना ये भौतिक जगत त्याग के अब तीन धाम चले जाते हैं, तभी कृष्ण का पांडव का समाचार मिलता है, तभी वो भी अपना राज्य त्याग के जंगल चले जाते हैं। वो जो राज्य है उसकी जिम्मेदारी वो अपने पौत्र प्रेक्षित को दे देते हैं, तो वो इमिग्रेट भी करते हैं, वो चले भी जाते हैं। यह भी कुछ कुछ परिस्थितियों में उचित मांग है। अगर ये समस्या है और आज जो समस्या है यह मैं उसमें उलझना नहीं चाहता, इसका मैं सहन कर सकता हूँ, प्रतिकार कर सकता हूँ, पर वो दोनों में मेरा समय बहुत जवाब जाएगा और मुझे जो काम करना है वो और महत्वपूर्ण कुछ और काम है, इसमें मुझे फंसना नहीं है, तो वो भी हम कर सकते हैं। पर ये तीनों में जो पर्याय चुनना है, सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, हमें सेवा भाव होना चाहिए। मैं सेवा के रूप में सहन करूंगा, मैं सेवा के रूप में प्रतिकार करूंगा, सेवा के रूप में मैं यहां से दूर चला जाऊंगा, दूसरी सेवा करूंगा। अगर सेवा भाव नहीं है, अगर घृणा भाव होता है, तो फिर हम जो भी करेंगे उससे समस्या का हल नहीं होगा, समस्या और ही बढ़ेगी। अगर हम सहन करते हैं पर वो सेवा भाव से सहन नहीं कर रहे, वो क्या है, मुझे लगता है मैं असही, ये इतना सारा इतना शक्तिशाली व्यक्ति है, मैं असही हूं, क्या कर सकता हूं, इसलिए सहन कर रहा हूं, तो फिर मैं सहन तो कर रहा हूं पर सारा नकारात्मक भाव जो है वो मेरे हृदय में है, और फिर उसका एक न एक दिन विस्फोट हो जाएगा। तो वो उस तरह से सहन करना मतलब खुद की भावनाओं का दबाना नहीं है, सहन करना मतलब अपनी भावनाओं को कहीं और लगाना है। ठीक है, इसमें मैं भावनाओं को नहीं लगाऊंगा, मैं महत्वपूर्ण ये चीज है, मैं यह करने वाला हूं। तो इसके लिए सेवा भाव बहुत जरूरी है। जिस हद तक हमें सेवा भाव होता है उस हद तक हमारा मन शांत रहता है। कैसे शांत रहता है, ठीक है मुझे भगवान की सेवा करनी है, कैसे सेवा करनी है वो मैं आगे ढूंढने का प्रयास करता हूँ। जब कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है भागवतम के आठवें अध्याय पहले स्कंद के, तभी वो एक उपमा बताती है, तो ही मैं अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत प्रतिमुद्वहता दग्धा गंगे वमुदन्वती। इस तरह से गंगा हमेशा सागर की ओर जाती है, वैसे मैं हमेशा मैं चाहता हूं कि मेरी चेतना हमेशा भगवान की ओर जाए। जब हम ये भाव रखते हैं कि मुझे भगवान की ओर अग्रसर होना है, भगवान की सेवा करनी है, अभी ये जो परिस्थिति आ गई है इसमें मैं भगवान की सेवा कैसे करूं, जब हमारा भगवान का सेवा भाव होता है तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते, भगवान हमें खुद मार्ग दे देंगे कि कैसे आप सेवा कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। मैं पिछली बार जब अमेरिका में गया था, तो जब अमेरिका के सिक्योरिटी में मैं एंटर किया तो सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है, तभी अचानक एक जोर से अलार्म आ गया। मैं देखा था अलार्म कहाँ से आया, और मैं देख रहा था तो अचानक लगभग 10-12 सिक्योरिटी गार्ड के गन मेरी ओर देख के पॉइंट करके साथ खड़े हो गए। तो वहां जो सिक्योरिटी था बोला कि आपके जो ये क्रचेज है, कुबड़िया है, उसमें हमको हाई एक्सप्लोजिव अलर्ट आ गया। तो हाई एक्सप्लोजिव अलर्ट आ गया, तो इसलिए हमको आपका पूरा सर्च करना पड़ेगा। तो फिर और तभी मुझे एक्चुअली वह एंटर करके अमेरिका में मुझे दूसरा एक कनेक्टिंग फ्लाइट लेना था, तो हम मेरा जो फ्लाइट लैंड हुआ था पहले से थोड़ा लेट हो गया था, तब जल्दी आना भी सोच रहा इसलिए इतना समझ और लेट हो गया, तो पहले तो थोड़ा सा तो थोड़ा विचलित हो गया था मैं। पर जब वो बोले कि ये वो सब आपको वो सारा गन के साथ पॉइंट करते सब अंदर दूसरे रूम में लेके गए, तो फिर अभी उसमें से वो एक सिक्योरिटी गार्ड आ गए, बोला कि अभी आपके जो क्रचेस है इसमें हमको सारा हाई एक्सप्लोजिव अलर्ट है कि इसमें कुछ विस्फोटक चीज है, ऐसे हमको सूचना मिली है, बोले कि हमको ये क्रचेस तोड़ने पड़ेंगे, ये कुबड़िया तोड़नी पड़ी। तो मैं उनको बोला कि अगर आप कुबड़िया तोड़ोगे तो मैं चलूंगा कैसे, तो वो व्यक्ति दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, वो मेरी समस्या नहीं है। मैं बोला अभी ये आप अगर कुबड़िया तोड़ोगे कैसे कुछ क्या करूं सोच रहा था तभी। तो जब फिर वो पूरा सिक्योरिटी का चेक कर रहे थे पूरा सिक्योरिटी, और फिर वो क्रचेस लेके जा रहे थे, तो क्या होता है तभी जब मुझे भगवद गीता में काफी रुचि है, तो भगवदगीता के श्लोक में हमेशा काफी हद तक मन में बोलते रहता हूँ, तो उस समय मैं भगवदगीता का 18वां अध्याय मन में स्मरण कर रहा था, तो तभी एकाए वो 18वें अध्याय का 61वां श्लोक मेरे मन में आ गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। भगवान कहते हैं कि सब जीव जो है ये एक माया के रूपी यंत्र पे बैठे हुए मतलब ये शरीर में है, और उनके साथ मैं भी हूँ, और मैं उनके भ्रमण का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तो जब ये श्लोक गाने लग गए, मन ही मन में गाने लग गए, तो सोचने लग गया, विचार आ गया अचानक मन में कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं भी 50-60 बार फ्लाइट में 100-150 बार फ्लाइट में जा चुका हूँ, कितने बार कहीं भी कोई समस्या आ सकती थी, एक्सीडेंट हो सकता था, कितनी सारी गलती हो सकती, कुछ नहीं हुआ, भगवान ने इतने सारे परिस्थितियों में कुछ मार्ग निकाल लिया है, अभी भी मार्ग निकाल देंगे, जब विचार करने लग गया। और तो फिर क्या, हाँ हम सब आत्मा है, अनेक शरीरों में हमारा भ्रमण हो चुका है, तो जब हम एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर जाते हैं हमको पता भी नहीं कहाँ जाने वाले हैं, पर हमको लेके जाते हैं भगवान ने। तो जब ऐसे विचार आ गया थोड़ा सा मन शांत हो गया, और फिर मैं भगवान से प्रार्थना करने, जो भी आपकी इच्छा है वो आपका समझ में आ गया, जैसे मैं क्या करूँ कृषि मुझे, तो ऐसे शरणागति कर प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक वह जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उसका बॉस वहाँ पे आ गया, ना क्या चल रहा है यहाँ पे, तो उसने बताया कि ये इसके क्रचेस में हमको एक्सप्लोजिव विस्फोटक का सूचना मिली है। तो फिर उसने मेरी ओर देखा, बोला ठीक है आई टेक केयर ऑफ दिस, मैं संभालूंगा, और फिर उसने मेरे क्रचेस उठा लिए, और फिर वो क्रचेस को उठा के देखने लग गया, और तभी मैं भी क्रचेस को देखने लग गया, तभी हम दोनों को उसे देखे समझा रहा कि एक्चुअली वो क्रचेस आप खोल सकते थे। तो बोले क्या हम खोल सकते इसको, बोले हाँ खोल सकते, तो फिर वो खोल सकते तो तोड़ने की जरूरत नहीं इसको, तो खोलने लग गए। फिर उन्होंने खोला और फिर देखा, बोले हमको कुछ तो भी इसके काला काला इसके अंदर दिख रहा है, तो क्या है, तो फिर उन्होंने एक ऐसे आयन का बार लाया और उसको अंदर डाल के निकालने लग गए। तो निकालने लग गए तो क्या आया वहां से, ये क्या है, ये मिट्टी है, मिट्टी इसके अंदर क्या कर रही है, बोले क्रचेस है उसके अंदर मिट्टी आ गई है, उन्होंने मिट्टी डाली, मिट्टी निकाली और मिट्टी वापस उनके मशीन में डाली, वापस आवाज आ गए, बोले क्या मिट्टी है, बोला फिर मुझे भी पता चला उसे मिट्टी कहाँ से आ गई। तो तभी क्या हुआ था, मैं अमेरिका जाने के पहले वृंदावन गया था, और जब वृंदावन गया था तो वृंदावन में जमुना के बाजू में गया था मैं, यमुना में स्नान करने के लिए, उनका पानी लेने के लिए, और क्या है जमुना में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो जमुना के बाजू का जो सॉइल है उसमें हाई मेटल है बहुत और क्या हो गया था, जब मैं वहां पे गया था तो मेरा जो ये कुबड़िया होती है, कुबड़ी के नीचे एक रबर पैडिंग होता है, तो वो रबर पैडिंग निकल गया था, और वो रबर पैडिंग जब निकल गया था तो वो सारी जो मिट्टी थी वो कुबड़ी के अंदर चली गई, और बाद में जब रबर पैडिंग लगा लिया तो उसके ऊपर लग गया तो वो मिट्टी अंदर रह गई। तो अभी क्या हो गया, वो जो मिट्टी थी वो उनको लगा ये एक्सप्लोजिव है, तो थोड़ी मिट्टी निकाली, बाद में बोले ये तुम्हारे क्रच को साफ करने का काम हमारा नहीं है, तुम्हारा है तो बोला ठीक है साफ कर लो। तो मैं सोचा था
कि उनके लिए जो एक्सप्लोजिव था वो क्या था, वृंदावन की रज था वो। तो व्रज रज वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से एक्सप्लोजिव है। वो जो है आध्यात्मिक रूप से हमारी जो भौतिक आसक्तियां है उसका विस्फोट कर देता है। तो ये जो व्रज रज था उनको लगा, उनके मेटल डिटेक्टर ने बोला कि ये एक्सप्लोजिव है, ये एक विस्फोटक है।
तो ये कहने का उद्देश्य था कि कभी कभी हम ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं कि हम असहाय हो जाते हैं, कि वो व्यक्ति अभी अगर टचस तोड़ देगा तो मैं अमेरिका में हूँ, उसके वो हुई सिक्योरिटी इंचार्ज, मैं कुछ कर नहीं सकता। बार क्या है कि जो भी परिस्थिति हो, अगर परिस्थिति को हम दोष देने लगते हैं तो हम असहाय हो जाते हैं। पर अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और कुछ मार्ग निकालने का प्रयास करते हैं तो मार्ग निकल जाता है। वो कैसे मार्ग निकलेगा वो कई बार हमें पता नहीं होता पहले से। तो जब वो मेरे क्रचेस तोड़ने वाले तो मुझे पता नहीं था क्या करना है, पर भगवान से प्रार्थना की, भगवान से शरण है, तो फिर तभी वही भगवान जिनको प्रार्थना कर रहा था वो उस सिक्योरिटी इंचार्ज के हृदय में, के उसके बॉस के हृदय में थे, वो बराबर वहां पे आ गया। उसने उसको बोला मैं संभाल लूंगा। फिर उसने, मैंने देखा, हम साथ में देखा कि क्या ये क्रचेस को तोड़ने के खोल सकते हैं। तो भगवान का क्या मार्ग है, क्या उनकी क्या योजना है, कई बार हमें पता नहीं होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की योजना नहीं है। भगवान की योजना जरूर होती है और हमको सहन करना है, प्रतिकार करना है, दूर जाना है। कभी कभी हम ये तीनों जो मार्ग है एक तरह से ये भौतिक पर्याय है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमें आध्यात्मिक पर्याय चुनना है। आध्यात्मिक पर्याय मतलब क्या है कि हे भगवान, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं, इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूं। जब सबसे पहले हम आध्यात्मिक पर्याय चुन लेते हैं कि हे प्रभु मैं आपका सेवक हूं, तो वो आध्यात्मिक पर्याय, आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं, वो जब आध्यात्मिक पर्याय हम चुन लेते हैं तो फिर उससे हमें अंतरंग रूप से थोड़ी शांति और सुरक्षितता महसूस होती है। क्योंकि हम तो शाश्वत रूप से दुनिया में जो भी हो जाए हम भगवान के सेवक हैं, हम आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा शाश्वत रूप से भगवान के सेवक है। जीव कृष्णदास यही विश्वास कोरली त्वार दुख नारी। भक्ति मोहन ठाकुर कहते हैं कि दुनिया में अनेक दुख है, पर अगर हम ये विश्वास कर लेते कि मैं भगवान का सेवक हूं, जो भी परिस्थिति आए उसमें मुझे भगवान की सेवा करते रहना है, तो फिर कोई दुख नहीं है। दुख नहीं है मतलब ऐसे नहीं कि दुख चले जाएंगे, पर उसका मतलब ये है कि जो भी दुख के समस्याएं आएंगे उनमें से हम मार्ग मिल जाएगा हमको आगे। वो जो दुख है उसको हम और बढ़ाएंगे नहीं हमारे मन के विचारों के द्वारा। सबसे पहले हम आध्यात्मिक पर्याय जब चुन लेते हैं फिर उसके बाद में सेवा भाव रखते हुए फिर हम चुनाव कर सकते, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो जब हम सेवा भाव का चुनाव पहले कर लेते हैं, भगवान मैं आपका सेवक हूं, उससे एक शांति मिलती है जिससे कि हम शांत रूप से विचार कर सकते हैं। नहीं तो फिर शांत रूप से विचार करना ही नामुमकिन हो जाता है, और फिर जो हम कार्य करते हैं उससे ही समस्या और बढ़ जाती है। कई बार भगवान बताते हैं मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा करिष्यसि। अगर आप मेरा स्मरण करते हो, आप मेरी चेतना में रहते हो, तो जो भी समस्या आएगी उसके परे आप जा सकते हो। अभी कौन सी समस्या कैसे आएगी, कौन सी समस्या कैसे कैसे परे हम जाएंगे, यह हम पहले से नहीं जानते हैं। कैसे कि हमारी योजना, हम जो योजना बनाते हैं और भगवान जो योजना बनाते हैं उनमें फर्क होता है। और फर्क क्या है कि वी लुक एट द प्रेजेंट एंड प्लान द फ्यूचर, गॉड लुक्स एट द फ्यूचर एंड प्लान्स द प्रेजेंट। हम वर्तमान को देख के भविष्य की योजना बनाते हैं, पर भगवान भविष्य को देख के वर्तमान की योजना बनाते हैं। इसीलिए हम कभी कभी जो योजना बनाते हैं वो भले ही पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। भगवान की योजना है, और अगर हम श्रद्धापूर्वक सेवा भाव में लगे रहते हैं, जो भी होगा मैं आपकी सेवा करते रहूंगा, धीरे धीरे भगवान की क्या योजना है वह हमें दिख जाएगी। और कितना भी अंधकार हमारे जीवन में क्यों ना हो, कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है, ये परिस्थिति है, वो मनस्थिति है, जो भी है, वो अंधकार से हमको रोशनी का मार्ग मिल जाएगा। तो भगवद्गीता के अंत में जो बताया गया है क्या है, आखिरी श्लोक है भगवद्गीता का, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवानी तिर्मतिर मम। वहां पे बताया गया है कि जहां पे कृष्ण है और जहां पे अर्जुन है वहां पे जरूर यश है। तो शुरुआत में हमने बताया कैसे दो प्रकार के विचारधारा है, कर्मवाद और दैववाद। तो कर्मवाद मतलब जो मानव हमारे हाथ में जो है वो करना, और कर्म मतलब जो हमारे हाथ में है वो करना। दैव मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में विचार, उसके उसको जो हम दैव बोलते हैं। तो जो दैव है, दैव के अधिष्ठाता वास्तव में जो है वो भगवान है। जब पांडव कौरव युद्ध चल रहा होता है तो 10वें दिन भीष्म पितामह गिर जाते हैं, तो उसके बाद में अभी कौरव का अगला सेनापति कौन बनना है वह चर्चा होती है। तो 10 दिन तक जब भीष्म सेनापति होते हैं तब तक कर्ण कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो 11वें दिन कर्ण युद्ध में रणभूमि में उतर जाता है। तो अभी सबको लगता है कि कर्ण को ही दुर्योधन अपने सेनापति बना देगा, क्योंकि कर्ण उनका बहुत प्रिय मित्र होता है। पर कर्ण कहता है कि आपके सेना में मुझसे भी बड़े बहुत लोग हैं, और खास करके द्रोण है, वो तुम्हारे गुरु हैं, और तुम उनको सेनापति बनाओ, उन्होंने बड़े प्रामाणिक बड़े शक्ति के तुम्हारे लिए युद्ध किया है। जब द्रोण को सेनापति का पद मिलता है तो द्रोण को बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। कहते हैं कि मैं तुमने मुझे आदर दिया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तो क्या करो तुम मुझसे कुछ वर मांगो। तो फिर दुर्योधन जानता था कि कर्ण ये प्रसन्न हो जाएंगे, द्रोण कुछ वर जरूर देंगे। तो उसने योजना बनाई थी, बोले कि पता है कि आप, मैं चाहता हूं कि आप युधिष्ठिर को गिरफ्तार करके जिंदा मेरे सामने बंदी बना के लेके आ जाओ। तो द्रोण की आंखें बड़े हो जाती, बोलते हैं कि युधिष्ठिर इतना अजात शत्रु है कि तुम भी उसकी मृत्यु नहीं चाहते, तुम उसको जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हो। तो दुर्योधन कहता है कि 10 दिन के युद्ध से मैं समझ गया हूं कि ये भीम और अर्जुन इतने शक्तिशाली है कि इस युद्ध में हम जीत नहीं सकते। तो मेरी योजना यह है कि अगर आप युधिष्ठिर को गिरफ्तार करके लेकर आ जाओगे तो फिर मैं युधिष्ठिर को पुनः जुआ खेलने के लिए चुनौती दे दूंगा, और उसको जुआ में हरा के वापस पुनः 14 साल वनवास भेज दूंगा, और फिर उस समय में मेरी सेना को और शक्तिशाली बनाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं उनको हराऊंगा। तो द्रोणाचार्य अपने सिर हिलाते हैं, तुम कभी सुधरोगे नहीं, सोचते हो। पर फिर द्रोणाचार्य कहते हैं ठीक है कि मैंने तुमको बोला था कि मैं तुम्हें तारी छापू तुम्हारा भर दूंगा, मैं युधिष्ठिर को गिरफ्तार कर सकता हूं, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें अर्जुन को मेरे रास्ते से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन भले ही मेरा शिष्य है पर अभी जो भी मेरा सारा ज्ञान मैंने उसको दिया है तो इसलिए वो एक तरह से मेरा समतुल हो गया है, पर वह युवा है अभी और उसने काफी तपस्या करके अनेक दैवीय अस्त्र भी प्राप्त किए, इसलिए अगर अर्जुन मेरे रास्ते के बीच में आएगा तो मैं युधिष्ठिर को पकड़ नहीं पाऊंगा। तो फिर तभी जो त्रिगर्त नाम के राज्य होते हैं उसके सैनिक होते हैं, उसके सेनापति उसके राजा होते हैं सुशर्मा, सारे त्रिगर्त सुशर्मा बोलते हैं वो जिम्मेदार थे कि हम अर्जुन को चुनौती देकर कहीं और ले जाएंगे और आप युधिष्ठिर को गिरफ्तार कर लो। तो 11वें और 12वें दिन में द्रोण पूरा प्रयास करते हैं, और 11वें दिन में वो पहुंच ही गए होते युधिष्ठिर के पास, पर तभी सूर्यास्त हो जाता है, युधिष्ठिर तभी तक वो हार गए होते, अपना उनका उनका रथ टूट गया होता है, उनका कवच टूट गया होता है। 12वें दिन भी वापस वैसे ही होता है, पर जैसे ही युधिष्ठिर को गिरफ्तार करने वाले होते तभी अर्जुन वो त्रिगर्तों को हरा कर वहां पर आ जाते हैं और युधिष्ठिर को बचा लेते हैं। फिर 12वें रात को कौरव के बीच मिलते हैं, तो फिर दुर्योधन द्रोणाचार्य को ताने मारने लगते हैं, कहते हैं कि तुमने तो अपने वचन दिया था कि तुम युधिष्ठिर को गिरफ्तार कर लोगे, अभी 2 दिन हो गए हैं और इसके बावजूद आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। तो द्रोणाचार्य बड़े नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम अभी देख रहे हो मेरे शरीर में कितने जख्म हुए हैं, ये सारे तीर तुम्हारे ही सेवा के लिए मैंने सहन किए, मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, पर मानव के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। जो फल है वह दैव के द्वारा निर्धारित होता है, और दैव के स्वामी जो है वो अर्जुन के रथ पे है।
तो इसीलिए
मैं विवश हूं। तो यहां पे ये महत्वपूर्ण बात है कि कर्म, हम देखा कर्मवाद देखा, दैववाद देखा, पर दैव के परे दैव के स्वामी भगवान है। तो अभी भगवद्गीता के अंत में क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, मतलब अर्जुन ने धनुष उठा लिया है युद्ध करने के लिए, मतलब वो अपना कर्म करने के लिए बड़ा तत्पर है, पर वो केवल भौतिक स्तर पे कर्म नहीं कर रहा है, भगवान की सेवा में कर्म कर रहा है। करिष्ये वचनम तव, वो भक्ति में सेवा कर रहे हैं आज। और फिर कृष्ण जो है दैव के स्वामी है वो उनके साथ है। तो जब जब कृष्ण और अर्जुन साथ में आ जाते हैं तो वो तभी वहां पे यश अनिवार्य है, जरूर आएगा ही, विजय वहां वहीं पे होंगे। उसी तरह से अभी जो जैसे अर्जुन और कृष्ण एक रथ पे थे, हमारा शरीर भी एक रथ के समान है, और हमारे शरीर में हम आत्मा जो है वो अर्जुन के समान है, और हम सबके शरीर में भगवान स्वयं है वो परमात्मा के समान है। तो इसलिए अगर हम दृढ़ संकल्प से भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो कितनी भी बड़ी समस्या है क्यों नहीं आएगी, भगवान की योजना से हमें आगे मार्ग मिल जाएगा। अर्जुन को पहले से पता नहीं था कि कैसे कौन से योद्धाओं से कैसा युद्ध होगा, कैसे उनका विजय होगा, पर दृढ़ संकल्प से आगे जाते रहे और उनको अंत में उनका विजय हो गया। तो उसी तरह से हमारे जीवन में आज क्या समस्याएं हैं, उनका क्या हल है, कल क्या समस्या आने वाली, उनका क्या हल होने वाला है, वह सब हमको अभी पता नहीं हो सकता है शायद, और कभी कभी थोड़े विचार करने से पता चल जाएगा, कभी कभी पता नहीं चलता है। पर अगर हम दृढ़ संकल्प से भगवान की सेवा करने का संकल्प लेते हैं तो फिर अनेक विकल्पों में कौन सा चुनना है उसका मार्गदर्शन हमें मिल जाएगा और हम हमारे परिस्थिति में आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर हमारे जीवन में कोई हमें समस्या करा हमारा परेशान कर रहा है तो वो सत्य है, वो परेशान कर भी रहे हैं हमको, उसको एक व्यवहारिक रूप पे हमें कुछ हल करना है, कुछ उसका प्रतिकार करना है, उसको सहन करना है, उससे दूर जाना है, जो भी करना है वो करना है। पर महत्वपूर्ण क्या है कि हम कृष्ण भावना में बने रहे, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द पर्सन हुम वी आर ब्लेमिंग, बिकम कॉन्शियस ऑफ द पर्सन हु विल डिलीवर अस। जो व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है उसके बारे में विचार करते रहेंगे तो हम उसकी चेतना में रहेंगे, ठीक है ये व्यक्ति है पर मेरे सनातन संबंध भगवान के साथ है, तो मैं कृष्ण भावना में रहना चाहता हूँ, इस व्यक्ति की चेतना में नहीं रहना चाहता। और जब हम जितना हम कृष्ण भावना में आ जाएंगे उतना जो भी समस्या आएगी हमको सहन करने की शक्ति मिल जाएगी, और न केवल वो समस्या को सहन करेंगे हम पर उसके साथ साथ भगवान के करीब हम जाएंगे, और जितना हम भगवान के करीब जाते हैं उतना हम सब समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तो सारांश में चर्चा की आज किस तरह से कि हमारे जीवन में कोई हमें परेशान करता है तो उसको दोष देने की वृत्ति से हम हरेक ऐसे जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति जब विपरीत परिस्थिति आती है तो उसको समझने के लिए और उसमें हम क्या कर सकते हैं समझने के लिए हमने दो विचारधाराएं देखी, एक है कर्म, एक दैववाद जो कहता है कि सब कुछ दैव द्वारा निर्धारित है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो उससे व्यक्ति जो कर सकते हैं वो भी नहीं करते, जैसे मैंने दक्षिण अमेरिका में उदाहरण दिया कि वो जो ट्राइब था वो जाती थी, वो एक घोड़े को अमावस्या की रात को आते हुए देखकर उन्होंने खुद ही अपने शस्त्र छोड़ दिया और हार मान ली। तो ऐसे दैववाद जो है वो गलत है, क्योंकि हम खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, और शास्त्र भी कहते हैं कि हमें ये करो वो मत करो, मतलब हमारे पास स्वेच्छा जरूर है। और उसका दूसरा विपरीत है कर्मवाद, मतलब सब कुछ हमारे हाथ में है, मैं मेहनत करूंगा तो मैं यशस्वी होगा ही। पर ये भी सत्य नहीं है कि कई चीजें ऐसी होती जो हमारे हाथ में नहीं है। तो क्रिकेट मैच में भले प्लेयर्स बहुत अच्छे से खेले पर अगर बारिश आ जाएगी तो वो जीत नहीं सकते, तो चीजें कुछ चीजें हमारे परिस्थिति के परे भी है। तो सत्य क्या है, कर्म, दैव और काल, ये तीनों साथ में आते हैं तो फिर हमें फल मिलता है। तो खेती करना और संतान उत्पत्ति करना दोनों का उदाहरण दिया इसमें संबंध में। और फिर हमारे जीवन में इसका संबंधों के दृष्टि में क्या इसका महत्व है कि किस तरह से हमें कोई परेशान कर रहा है तो वो परे वो व्यक्ति हमारे जीवन में आ गया है, वो भले ही दैव से हो सकता है या वो व्यक्ति हमने कुछ गलती की है उसके कारण गुस्सा आ गया, वो कर्म से हो सकता है। तो हमें देखना क्या है कि मुझे मेरे धर्म में, मेरे धर्म के मार्ग में रहने के लिए मुझे क्या करना है। तो ऐसे पैसे हमारे तीन मार्ग होते हैं, सहन करो, प्रतिकार करो, या दूर चले जाओ वहां से। मैंने देखा कि पांडवों ने पहले सहन किया, फिर प्रतिकार किया, फिर बाद में उन्होंने वन में चले गए, वो वहां से दूर चले गए। तो अभी कब सहन करना है, कब प्रतिकार करना है, इसका फैसला कैसे करते हैं हम, क्या हमारा जीवन महत्वपूर्ण का कार्य है उसमें ये कितना व्यत्यय कर रहा है। अगर कोई एथलीट है, कोई खिलाड़ी है, वो चाहेगा कि मैं, मेरे शरीर में कहीं भी कभी भी कुछ भी दर्द ना हो, मैं पूरा 100% फिट हूं, तो वैसे होना लगभग नामुमकिन ही है। पर थोड़ा सा दर्द है तो उसको सहन करके हम खेलेंगे, बहुत ज्यादा दर्द है तो फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। उसी तरह से जो शारीरिक स्तर पर होता है वो मानसिक स्तर पर भी हम देख सकते हैं, कि भावनाओं के स्तर पर भी हम देख सकते, संबंधों में देख सकते, थोड़ा बहुत दर्द तो रहेगा ही। और दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो परफेक्ट हो सकता है, समस्या तो आएगी ही। पर हमारा जो धर्म है, हमारे कर्तव्य है, हमारे जो योगदान है, उसमें अगर ज्यादा व्यत्यय नहीं आ रहा है तो फिर उसको ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। वह जो व्यक्ति ने जो भी कर रहा है वो एक बार करते हैं, पर उसको बार बार रिप्ले करके खुद को दुखी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसने कर दिया, चलो आगे चलो। अभी जैसे गाड़ी में अगर हम जा रहे हैं, कोई हमको ढकेलता है तो बाजू हो जाओ, पर वो कार से, गाड़ी से बाहर ढकेल लगता है तो फिर प्रतिकार करना है। तो उस व्यक्ति से कितनी परेशानी हमें हो रही है उसको मात्रा हमें समझनी चाहिए, फिर उसके बाद में उचित मार्ग ढूंढना है। तो तीनों पर्याय अब कभी कभी उचित हो सकते हैं, कभी सहन करना, कभी प्रतिकार करना, कभी वहां से चला जाना, अलग अलग परिस्थिति में हर एक उचित हो सकता है। पर कौन सा उचित है यह समझने के लिए हमें सिर्फ इन तीन पर्यायों में चुनना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चुनना है कि हमें हमारी मानसिकता जो है उसको बदलना है। कि भौतिक पर्याय मतलब मैं नियंत्रक हूँ, वो भाव है, और आध्यात्मिक चेतना मतलब मैं सेवक हूँ। तो जब हम वो पर्याय चुन लेते हैं कि मैं सेवक हूँ, भगवान का सेवक हूँ, ये भगवान की सेवा कैसे करनी है, उस भाव से जब हम कार्य करने लगते हैं तो फिर ददाम बुद्धि योगम, तक भगवान हमें मार्गदर्शन देते हैं कि उस परिस्थिति से हम कैसे जाए परे। कोई भी हमारे जीवन में परिस्थिति आ रही है तो कभी कभी वो परिस्थिति क्यों आ रही है समझ में नहीं आता है हमको, पर हम जोर देते कि मैं क्या कर सकता हूँ उस परिस्थिति में। और जिस हद तक हम सेवा भाव रखते हैं तो भगवान की योजना भले तभी हम समझ में नहीं आ रही है, भगवान भविष्य को देख के वर्तमान की योजना बनाते हैं, धीरे धीरे हमें वो योजना समझ में आ जाएगी। तो भगवद गीता के अंत में बताया कि जब आत्मा और परमात्मा साथ में कार्य करते हैं तो यश अनिवार्य है। जो हमारे हाथ में हमारा कर्म करना है, जो दैव है वो हमारे हाथ में नहीं है, पर दैव के स्वामी भगवान कृष्ण है। इसीलिए हमारा कर्तव्य सेवा भाव में अगर करते हैं और भगवान का की चेतना में रहते हैं तो जो भी समस्या आएगी उससे हम मार्ग में मिल जाएगा आगे। और उस जो व्यक्ति में परेशान भी कर रहा है उसकी चेतना में रहकर अगर हम कृष्ण भावना में रहेंगे, कृष्ण चेतना में रहेंगे, तो फिर न केवल उस परिस्थिति को हम सामना कर सकते हैं, पर उस परिस्थिति के द्वारा प्रेरित होकर हम भगवान की ओर चेतना में बढ़कर भगवान की भक्ति में भी प्रगति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी कोई सवाल है? यस।
के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने कहा कि देवी जो है हमारे से जो काम करता है, तो ऐसा भी कहना है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है बोलते हैं, तो इसका क्या कहना है?
अच्छा, कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वास्तव में जो और प्रसाई से कहना कि भगवान के सैंक्शन के बिना, भगवान के अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसे भगवान की इच्छा नहीं होती। अभी दुर्योधन जब पांडव के प्रति अत्याचार कर रहे थे, क्या भगवान की इच्छा थी कि दुर्योधन ऐसे करे? क्या भगवान की इच्छा थी कि दुशासन द्रौपदी का अपमान करे? क्या भगवान स्वयं दुर्योधन के सामने गए हैं और शांति की उसकी याचना कर रहे हैं? शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं और दुर्योधन नहीं बोल रहा है, तो क्या भगवान की इच्छा है कि दुर्योधन नहीं बोले? क्या भगवान की इच्छा यदि है कि नहीं बोले तो फिर भगवान वहां पे गए ही क्यों? इसे क्या है कि इस दुनिया में सबको भगवान ने स्वेच्छा दी है, और स्वेच्छा का मतलब है कि वो व्यक्ति अपने स्वेच्छा का उपयोग कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है, और यह क्षमता उस व्यक्ति को दी गई है। अभी किस हद तक वो दुरुपयोग कर सकता है और किस हद तक वो उपयोग कर सकता है, वह जो है हमारा हरेक का क्षेत्र होता है। अभी ये क्षेत्र की संकल्पना समझना महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर कोई कुत्ता है, उसका मालिक है, और वो कुत्ते को एक जब कभी कभी जो लोग होते हैं कुत्ते को बाहर घूमने को लेके जाते हैं, तो जब वो सुबह जाते हैं घूमते, कुत्ते को एक लीश पे डालते हैं, रस्सी होती है उसके गले में बांधते हैं और कुत्ते को कुत्ते को लेके जाते हैं। तो कुछ कुछ लोग जो रस्सी बांधते हैं वो लंबी होती है, कुछ छोटी रस्सी होती है, और फिर वो जितनी रस्सी लंबी है उतने दायरे में कुत्ता घूम सकता है, इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, ये देख सकता है, वो देख सकता है, और वो कुत्ते को लग सकता है कि मैं स्वतंत्र हूं। अगर वो कुत्ता रास्ते से बाजू में जाके उसको कोई जानवर दिखता है, उसको उसका पीछा करने लगता है, वो पीछा करेगा उसका, इधर उसको कुछ फल दिखेगा, फूल दिखेगा, उसके पीछे जा सकता है, वो जहां जाएगा जा सकता है। पर जब जैसे ही पल में मालिक बोले अरे मुझे अभी जाना है, वो कुत्ता, वो क्या है, कुत्ता हवा में कूद रहा होगा और मालिक खींच देगा, तो वो हवा के बीच में ही खींचा जाएगा। तो जितना वो कुत्ते का रस्सी है उतने दायरे में उसको स्वतंत्र रहता है, और उसमें जब तक मालिक चाहता है वो जो भी करना चाहता है कर सकता है। तो उसी तरह से हम सबके जीवन में हमें हमारे पूर्व इच्छा से, पूर्व कर्म से कुछ क्षेत्र मिला है। तो क्या है, एक है फ्री विल और दूसरा है फ्रीडम। फ्री विल मतलब स्वेच्छा, स्वेच्छा ये सबको है, पर फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। अभी कोई कैदी है, कैदी के पास भी स्वेच्छा है पर कैदी के पास स्वतंत्रता नहीं है। स्वेच्छा मतलब अंदर से हमारी इच्छा का चुनना, स्वतंत्रता मतलब बाहर से उस इच्छा पे हम कितना कार्य कर सकते हैं। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा का क्षेत्र दिया गया है और उस क्षेत्र में वो अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी मान लीजिए कोई बड़ा राजनेता, जैसे पाश्चात्य देशों में हिटलर था, हिटलर ने करोड़ों जू लोगों को मार डाला, बहुत से लोगों को उसने अत्याचार किया था। तो अभी हिटलर को उसके पूर्व कर्म से हम कह सकते हैं कि उसको एक बड़ा क्षेत्र मिल गया था। अभी उस क्षेत्र में क्या करना है क्या नहीं करना है वह उसके अपने स्वेच्छा से कह सकते, वो उसको ऐसा पूर्व कर्म था कि अनेक लोगों के मन पे प्रभाव कर सकता था, ओजस्वी वक्ता था वो और अच्छा नेता के गुण थे उसमें, पर उस सबका उसने दुरुपयोग किया। तो अभी उसके क्षेत्र में जो भी लोग थे उनके उन पर उसने काफी अत्याचार किया, तो वो जो लोगों पे अत्याचार हुआ वो अत्याचार हो ये भगवान की इच्छा नहीं थी, ये उसकी इच्छा थी, और क्योंकि उसको उसके कर्म के अनुसार उतना क्षेत्र मिल गया था तो उस क्षेत्र में वो लोग जो आ गए उनको अत्याचार सहन करना पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो होते हैं उनके क्षेत्र में जो करना चाहते हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है, भगवान जिम्मेदार नहीं है। ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। भगवीता के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं किसी के पाप का या किसी के पुण्य की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। वही व्यक्ति अपने अज्ञान के अनुसार गलत कार्य करते हैं। अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव, जंतु अपना अपना कार्य करते हैं। तो अभी जो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि वो हवा में उड़ भी रहा होगा, हवा में कूद रहा है कूदता, और तभी जो मालिक है रस्सी को खींच के तो नीचे गिरा सकता है, खींच सकता है। वैसे मतलब जो क्षेत्र भी हमको दिया है वह भगवान ने ही दिया है, और वो एक पल में ये क्षेत्र जा भी सकता है, पर उस क्षेत्र जब तक हमारे पास है वो क्षेत्र, उसमें जो करना है वो हम चुनते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर दुरुपयोग करते हैं अपनी स्वेच्छा का और उसे कोई अत्याचार करते हैं, तो उसको भगवान की इच्छा मानना उचित नहीं है। हम देख सकते हैं कि ये भगवान की योजना हो सकती है। देखिए, भगवान की इच्छा और भगवान की योजना, इसमें फर्क है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सी, एवरीथिंग दैट हैपेंस इज नॉट कृष्णाज डिजायर, बट एवरीथिंग दैट हैपेंस कैन बी विद इन कृष्णाज प्लान। मैं दो उदाहरण देता हूं उसके लिए। एक उदाहरण है कि मान लीजिए कोई विद्यालय है, अभी उसमें टीचर्स पढ़ाते हैं, फिर एग्जाम्स होते हैं। अभी एग्जाम में फेल होना, अभी एग्जाम में विद्यार्थी फेल हो जाएंगे, यह स्कूल का उद्देश्य नहीं है। स्कूल का उद्देश्य, स्कूल का पर्पज यह नहीं कि विद्यार्थी फेल हो जाए, पर अगर विद्यार्थी फेल हो गए तो स्कूल में उसके लिए भी योजना है। ठीक है, आप फेल हो गए, एक सब्जेक्ट फेल हो गए तो आगे बढ़ो, ये एग्जाम आप वापस दे सकते हो। अगर तीन चार सब्जेक्ट फेल हो गए फिर आपको ये कक्षा में वापस जाना पड़ेगा। तो जो फेल भी हो जाए उनके लिए भी योजना है। तो जो भी स्कूल में होता है, आप पास हो जाओ फेल हो जाओ, वो उसके लिए आप जो भी करो उसमें, उसके लिए स्कूल में योजना है। सो एवरीथिंग इज विद इन कृष्णाज प्लान, बट एवरीथिंग इज नॉट कृष्णाज प्लान। समझे, इट इज विद इन कृष्णाज प्लान, मतलब भगवान की योजना में वो बता सकते हैं। वो अगर हम जो भी होता है वो उसको भगवान अपनी योजना में डाल के उससे कुछ अच्छा मार्ग निकाल सकते हैं, अच्छा निकाल सकते हैं। पर ऐसे नहीं है कि जो भी हो रहा है, विद्यार्थी फेल हो रहा है, वो स्कूल की योजना नहीं है कि विद्यार्थी फेल हो जाए। तो हम जो लोग अपना सदिच्छा का, अपने स्वेच्छा का दुरुपयोग करके जो कार्य करते हैं, तो उससे दूसरों पर भी अत्याचार होता है, वो अत्याचार हो ये भगवान की इच्छा ही है, ऐसे बोलना मुश्किल है। कभी कभी ऐसे लोगों से भगवान अपनी योजना आगे बढ़ाते हैं, पर ऐसे नहीं है कि हमेशा जो भी कर रहे हो भगवान की इच्छा ही है। भगवान की योजना में जरूर सब कुछ है, पर सब कुछ भगवान की इच्छा ऐसे नहीं है। इज क्लियर? थैंक यू। कोई और सवाल है किसी का? यस,
हरे कृष्ण। और ये आपने बताया कि जो हमको सता रहे हैं, जिनके कारण हमें कुछ दुख आया, हर समय उनकी चेतना में नहीं रहना है। कभी कभी भक्तों के समाज में देखा जाता है कि भक्तों को अन्य भक्तों के जीवन में क्या चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा रुचि रहती है। क्या कमाते हैं, क्या जमीन जायदाद है, घर में क्या चल रहा है, पति पत्नी वगैरह, और वही चर्चा करते रहते हैं, वही डिस्कस करते रहते हैं किसके साथ क्या चल रहा है, इसके जीवन में क्या हो रहा है।
ओके,
तो ये भी एक चेतना हो जाती है, और फिर एक आदत बन जाती है जो समझ में नहीं आता है। हमको लगता है कि भक्तों की ही बातें हैं तो क्या प्रॉब्लम है, तो भक्त का ही बात कर रहे हैं।
ओके, अगर हम भक्तों के संग में होते हैं, पर ये भक्त के जीवन में क्या हो रहा है, उसको कितना कमा रहा है, उसके घर कैसे है, उसके परिवार में क्या हो रहा है, इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा रहे करते रहते, और हमको इस हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भक्तों के संग में कर रहे हैं, तो हमको लगता नहीं कुछ गलत कर रहे हैं, और उसकी आदत पड़ जाती है बाद में, तो फिर उसको क्या करें। तो वास्तव में क्या है कि भक्तों का संग मतलब भक्तों के संग में हम भगवान का स्मरण करें, वह जरूरी है। अगर भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो हमें भक्तों के, हम अगर भगवान का स्मरण नहीं करें तो भक्तों के संग में है पर उस संग से शायद हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। और मान लीजिए कोई परिवार है, उसमें पति पत्नी बच्चे सब भक्ति है, तो कह सकते हैं हम तो 24 घंटे भक्तों के संग में रहते हैं, हमको मंदिर में आने की जरूरत क्या है। नहीं, मंदिर में आने की जरूरत यह है क्योंकि क्या है कि वो जो संबंध है वो काफी हद तक व्यावहारिक हो जाते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, और फिर उसमें आध्यात्मिक भगवान का स्मरण, भगवान का केंद्र कितना रहता है वह कभी कभी काफी कम हो जाता है। यहां तक कि अगर हम भक्तों के संग में भी रह रहे हो, सिर्फ व्यवहारिक से बात करें, ठीक है तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा करो, ये करो वो करो, तो वो भक्तों का संग भी, भले ही भगवान की सेवा क्यों नहीं कर रहे, वह भी भौतिक हो जाता है। भक्तों के संग में भी आके हमको थोड़ा भगवान के बारे में बात करना है, हम खुद भगवान के बारे में बात करते, दूसरे भगवान के बारे में बात करते, भगवान का स्मरण करना है बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी ने संस्था का नाम जो दिया है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, वो कृष्ण भावनामृत संघ है, वो कृष्ण कार्य संघ नहीं है। वो क्या क्या है, भले हम भगवान के बारे में सेवा कर रहे हैं, पर भगवान की सेवा करनी है भगवान की चेतना में रहकर, भगवान की भावना में रहकर। तो इसलिए यह कम से कम कुछ तो ऐसा समय हमारे जीवन में होना चाहिए जब हम कृष्ण कथा की ही बात करते हैं, और जो व्यवहारिक बातें हैं वो भी जरूरी है, ऐसे नहीं है कि वो नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई जीवन कोई भक्त है तो हम उनके भौतिक और आध्यात्मिक को ऐसे टुकड़ा नहीं कर सकते, ठीक ऐसे नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो हम उसे नहीं कह सकते मैं तुम्हारे आत्मा से प्रेम करता हूं पर तुम्हारे शरीर की परवाह नहीं करता, नहीं ऐसे नहीं। अभी इस समय में शरीर मन और आत्मा सब साथ में, तो अगर शरीर के साथ कुछ हुआ है, परिवार के साथ कुछ हुआ है, मन के साथ कुछ हुआ है, तो फिर अगर हम वो जानकारी प्राप्त करके कुछ मदद कर सकते हैं, कुछ सहानुभूति दिखा सकते हैं, कुछ सेवा कर सकते हैं, तो वो जानना गलत नहीं है, पर वो क्यों जान रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। अगर दूसरों के जीवन में क्या समस्या आ रही है ये देख के हम ठीक है मैं उनकी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या, ये भाव है, या मुझे अच्छा ये व्यक्ति इतना गर्व कर रहा था अभी देखो उसको भी नीचे आ गया है, तो हम उसके दुखों को देख के हमको सुख हो रहा है, या सिर्फ हम एक भौतिक जूते से प्रजल्प कर रहे हैं, तो फिर वो किस चेतना में कर रहे हैं वो भी जरूरी है। कभी कभी थोड़ा हम जिस कम्युनिटी में जब समाज में रह रहे उसमें क्या हो रहा है ये जानना भी जरूरी है, थोड़ा कुछ हद तक वो सतर्कता जरूरी है, पर महत्वपूर्ण क्या है सेवा भाव है। तो भक्तों के संग में अगर सेवा भाव रहता है, मैं भक्तों की सेवा करने के लिए आया, तो फिर या मैं भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करने की एक पद्धति है कि भक्तों की सेवा करूं, तो उसलिए अगर हम बातचीत करते हैं तो फिर वो गलत नहीं है। मतलब तीन चीजें बताई, एक है कि कुछ तो समय ऐसे होना चाहिए कि कृष्ण के बारे में ही चर्चा होनी चाहिए, भक्तों के संग में सिर्फ बाकी चीजों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, और दूसरा है कि हम अगर भक्तों के जीवन के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, अगर वो सेवा भाव से कर रहे हैं कि ठीक है मैं उसकी कुछ मदद कर सकता हूँ या मैं कुछ सीख सकता हूँ, मैं कुछ योगदान कर सकता हूँ, तो उस भाव से वो ठीक है। और तीसरा है कि वो जो हम कर रहे हैं तो उससे हम दूसरों के जीवन से कुछ भौतिक आनंद नहीं ले रहे पर आध्यात्मिक दृष्टि से उसको देख रहे तो ठीक है। अगर हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे भक्तों का संग करें कि जो हमें जो आध्यात्मिक विषयों के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए ऐसे है कि हमारे 5-6 भक्त मित्र हैं, तो उनमें से 3-4 ऐसे हैं जो ऐसी बातें करते हैं, तो कम से कम 1-2 भक्त ऐसे मित्र होते हैं कि जो हम आध्यात्मिक बात करते हैं, तो फिर उससे क्या होगा आध्यात्मिक चेतना रहेगी और थोड़ा भौतिक जानकारी जो है जरूरी है वो भी रह सकती है, पर अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर समस्या आ जाती है। क्लियर तो अभी सहन करना उससे हमारा शुद्धिकरण ज्यादा होता है, प्रतिकार करने से शायद संघर्ष बढ़ जाता है, और दूर चले जाए से हम कृष्ण भावना से दूर चले जाएंगे। ऐसे जरूरी नहीं है कि सहन करने से ही शुद्धिकरण होता है। अभी सहन करना अगर उससे हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो शुद्धिकरण हो रहा है। प्रभुपाद जी जब भारत में थे, प्रचार कर रहे थे, कोई भी लोग गंभीरता से भक्ति नहीं ले रहे थे। बोले ठीक है, कभी लोग आते कार्यक्रम, कभी आते, कभी सेवा करते हैं, कभी सेवा नहीं करते, मैं तो सहन कर लेता हूँ। और फिर भक्तिदास ठाकुर ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति, आप कृष्ण कथा करते, कोई भी व्यक्ति नहीं आता है तो दीवार को कृष्ण कथा सुना, उससे आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कह सकते थे कि मैं कृष्ण कथा करूंगा दीवार से, मैं शुद्धिकरण हो जाएगा, पर सिर्फ शुद्धिकरण करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, सेवा करना भी हमारा उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि भारत में रह के मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे एक मित्र है, वो इसराइल में थे, अभी भी इसराइल में है, तो वो मुस्लिम जा रहे जाते थे और वो क्या करते, कीर्तन करते थे, और कीर्तन करते हुए फिर वे ग्रंथों का वितरण करते थे। तो फिर एक बार वो कीर्तन करे तो वहां पे क्या है, लोग साधारणतः पाश्चात्य देशों में ऐसे होता है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो लोग कुछ नौकरी नहीं होती है, उनको ऐसे होता था 10-15 साल पहले कि सरकार उनको कुछ ऐसे सोशल वेलफेयर मटीरियल, समाज कल्याण के बारे में कुछ जानकारी है कि ये स्कीम है इसके, ये बीमारी है, ये ऐसे, तो वो जानकारी के पैम्पलेट्स बांटने के लिए उन लोगों को काम दे देती थी और फिर सरकार उनको मेंटेनेंस दे देती थी। तो क्या होता है कि जो लोग रस्ते पे कुछ चीज़ें बांटते हैं उनको लोग समझते कि ये इनको कुछ काम नहीं है, नौकरी नहीं है, इसलिए ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो उनका काफ़ी उनको मान नहीं देते, उनको अपमान करते थे। तो फिर वो एक यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे थे और वहाँ पे वो ग्रंथ कीर्तन कर रहे थे, ग्रंथ बांट रहे थे। तो जब वो बांट रहे थे तभी क्या हो गया, एक आदमी उनके सामने चला गया, उनके ओर देखा और उनके ऊपर थूक दिया और चला गया। तो अभी पहले तो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, बाद में सोचने लग गए कि ये मेरे शुद्धिकरण के लिए है, और फिर बाद में वो सोचने लग गए कि ठीक है, अगर मुझे शुद्धिकरण ही करना है तो मैं मंदिर में कीर्तन करके शुद्धिकरण कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे समाज रस्ते पे आके, मैं रस्ते पे आया हूँ सिर्फ मेरे शुद्धिकरण के लिए नहीं, मैं रस्ते पे आया हूँ भगवान के ज्ञान का वितरण करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो मैं सोचने लगे कि मैं इस परिस्थिति में रहूँगा और यही करूँगा तो यही होते रहेगा, कोई गंभीरता से नहीं लेगा। तो फिर तभी उन्होंने सोचा कि मुझे भौतिक दृष्टि से, वो गृहस्थ थे तो उस मंदिर के प्रेसिडेंट भी थे, वो तभी वो सोचा कि वो मुझे बताए थे सब कहानी कि मैं सोचा कि तभी आई हैव टू बिकम रिस्पेक्टेबल इन देयर आइज, देन दे विल टेक मी सीरियसली। तो वो बड़े पंडित परिवार से थे, उनके सारे परिवार में लगभग 15 लोग PhD है। तो फिर उन्होंने पुनः वो यूनिवर्सिटी में गए, उन्होंने ऑक्सफर्ड से PhD किया, और अभी वही यूनिवर्सिटी के बाहर वो जो बैठे थे और उनके ऊपर कोई थूका था, अभी वही यूनिवर्सिटी के अंदर वो जाके लेक्चर देते हैं और लोग अभी कृष्ण भावना वही हो रहे हैं। तो क्या है, हमें शुद्धिकरण ही नहीं करना है, हमें सेवा करनी है, और कभी कभी सहन करते रहेंगे तो सेवा नहीं होगी, कभी कभी सेवा करने के लिए सहन करना पड़ता है, पर महत्वपूर्ण क्या है, सेवा हो रही है कि नहीं वो देखना है हमें। तो जरूर क्या है, सहन करना एक महत्वपूर्ण चीज है, पर उससे महत्वपूर्ण है कि सेवा हो रही है नहीं। तो कभी 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 हमें परिवर्तन, परिस्थिति को परिवर्तित करना जरूरी है जिससे कि हम सेवा आगे बढ़ा सके। जैसे प्रभुपाद जी ने भारत से अमेरिका चले गए, ये भक्त ने उनसे पहला कह के मैं PhD कर लूंगा, तो हम आपको सिर्फ शुद्धिकरण नहीं करना है हमारा, हमको योगदान भी करना है, हमको सेवा भी करनी है। और प्रतिकार की बात है, अभी प्रतिकार करना, मिटिगेट करना, मतलब एक्चुअली मिटिगेट का हिंदी भाषांतर प्रतिकार नहीं है, मिटिगेट मतलब जो भी समस्या है उसका हल करने के लिए कुछ व्यावहारिक कार्य करना, प्रतिकार करना मतलब क्या, संघर्ष करना जैसे होता है। तो व्यावहारिक स्तर पे कुछ चीज अगर हम कर लेते हैं, मैं एक डॉक्टर से कनाडा में, नहीं यूके में, मैं एक डॉक्टर से मिला था, भक्त है वो डॉक्टर, बोल रहे थे कि जो भक्तों को शरीर की समस्याएं होती है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो बीमारी है, बोले कि कई बार भक्तों को शरीर की समस्या अभक्त ज्यादा होती है। बोले क्यों, क्योंकि भक्त जो भी समस्या आती है उसके लिए दवाई लेने के लिए कहते हैं ये शरीर दुखा ले है, ये जीवन दुखा ले, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, तो फिर वो समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। वैसे वो उनका अनुभव होता, ऐसे नहीं कि सब भक्त ऐसे ही करते हैं। तो यहां बता रहा हूं मैं कि हाँ जरूर जीवन जगत दुखाले है, शरीर भी क्लेश का कारण है, पर कई बार हम कुछ परिवर्तन कर लेते हैं तो उससे व्यवहारिक रूप से कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जरूर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और प्रभुपाद जी वैसे सहन करो ऐसे नहीं बोला करते थे हमेशा। प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना अमृत के जो नेता थे उन्होंने जीबीसी को बोला कि नेवर लेट वन मूवमेंट पास विदाउट थिंकिंग अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव इस्कॉन, कि हर पल आप विचार करो कि आप कृष्ण भावना आंदोलन को और अच्छा कैसे बना सकते हो। वैसे कि जो भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, जो अगर कुछ समस्या है उसको सहन कर लो, ऐसे प्रभुपाद जी का भाव नहीं था। जानते थे कि बहुत कुछ हम और ठीक कर सकते हैं, तो उसको इम्प्रूव करना यह भी सेवा भाव से हम कर सकते हैं। और जब इमिग्रेट की बात करते हैं तो इमिग्रेट से हम कृष्ण भावना से दूर जा सकते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी हम उसके द्वारा भी कृष्ण भावना में और प्रगति कर सकते हैं। इमिग्रेट मतलब भक्तों का संग छोड़ना नहीं है, इमिग्रेट का मतलब ये ही है कि कभी कभी कुछ कुछ भक्त होते हैं उनकी विचारधारा एक पद से होती है, तो उस विचारधारा से हमारा विचारधारा जमती नहीं है, तो शायद उस परिस्थिति में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि वो भक्त गलत है या हम गलत है। जीव रूप गोस्वामी ये भी कहते हैं कि हमें सजातीय आशय भगवत भक्ति संग चाहिए, कि हमें ऐसे भक्तों का संग चाहिए जो उनका विचारधारा हमारे समान है, तो उससे हम प्रगति करेंगे। मतलब क्या, अगर कोई भक्त है उसको उनको बहुत रुचि है शास्त्रों का ग्रंथों का वितरण करने में, हमको बहुत रुचि है ग्रंथ का अध्ययन करने में, उनका ज्ञान समझने में, फिर शिक्षण देने में, अगर ऐसे दो भक्त साथ में आएंगे तो शायद एक वक्त हम जब चलो हम शुरू करते तो हम थोड़ा शास्त्र पढ़ते, दोनों में कुछ समान ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक भक्त बोलेगा क्या है, तुम शास्त्र में तुम वितरण करते तुम पढ़ते क्यों नहीं हो कभी, अरे ज्ञान तो क्या है, पढ़ने के बाद क्या करना है, वितरण ही करना है, चलो वितरण करते हैं। तो दोनों में एक समान कुछ मिलेगा नहीं, पर जो उसको ग्रंथ वितरण करने में रुचि है वो उसको दूसरा कोई ग्रंथ वितरण करने वाला भक्त है उनके संग में वो सुखी रहेगा। जो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं उनको अगर शास्त्रों का अध्ययन करने वाला कोई भक्त है उसमें रुचि मिल जाए, रुचि है, तो फिर दोनों प्रगति करेंगे। तो इसीलिए हम दूर जाना मतलब भक्तों के संग से दूर जाना, भक्त से दूर जाना नहीं बोल रहे हैं, कि उस परिस्थिति से या उस संबंध से मैं थोड़ी दूरी करना जिससे कि हम आगे प्रगति कर सके। ऐसे नहीं है कि हमें भक्ति छोड़नी है, हम प्रतिकार करना है, मतलब ऐसे नहीं कि हमें संघर्ष करना है। ऐसे उसी परिस्थिति में थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे उससे फिर शायद काफ़ी चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती हैं। तो सेवा भाव रखेंगे तो फिर ऐसे नहीं है कि सेवा सिर्फ सहन होकर के कर सकते हैं, या सेवा सिर्फ दूर जाके कर सकते हैं, या सिर्फ सेवा प्रतिकार कर सकते हैं, सेवा हर पद से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की।